नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। लॉरा वेंडरकम की पुस्तक आई नो हाउ शी डज इट, समय प्रबंधन, कामकाजी मातृत्व और पेशेवर महत्वाकांक्षा पर आधारित विश्लेषणात्मक गैर कथा है। इसका केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या चुनौतीपूर्ण करियर रखने वाली महिलाएं परिवार, निजी रुचियों और पर्याप्त आराम के लिए सचमुच समय नहीं निकाल सकती। प्रचलित बहस अक्सर त्याग, थकान और असंभव संतुलन की कहानियों पर टिकी रहती है। वेंडरकम इस धारणा को केवल प्रेरक संदेश से नहीं बल्कि विस्तृत समय डायरी के आंकड़ों से परखती हैं। पुस्तक में कम से कम $1,00,000 वार्षिक आय वाली, घर में बच्चों के साथ रहने वाली पेशेवर महिलाओं के 1001 दिनों के घंटे दर घंटे रिकॉर्ड का उपयोग किया गया है। लेखिका देखती हैं कि ये महिलाएं काम, घर और स्वयं के लिए उपलब्ध साप्ताहिक 168 घंटों को वास्तव में कैसे बिताती हैं। उद्देश्य यह दावा करना नहीं है कि हर परिस्थिति आसान है, बल्कि समय के बारे में हमारी धारणाओं और वास्तविक व्यवहार के बीच अंतर दिखाना है। बल्कि तन बरी गौनियत अरहाय कर जोरा और वीर्य सा कर बोधरी बदर सा एक गौर बल पुस्तो तरबोज की गति ने का तरीका हद देना मत याद रहा वे रमस ने के कॉलिबे को लॉरी के का सफल दुख व फिर हम रिश्तों पर भी तो फिर चमो रब का पकुर और औरता के इन को दो में पुस्तक काम, घर और स्वयं, इन तीन क्षेत्रों में अधिक सोची समझी प्राथमिकताओं, लचीलेपन और सहायता की भूमिका को स्पष्ट करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले समय की अनुभूति और समय डायरी से दिखने वाला वास्तविक अंतर। पुस्तक का सबसे विशिष्ट आधार समय डायरी है। वेंडरकम लोगों के उस अनुमान पर संदेह करती हैं जिसमें वे काम के घंटे, बच्चों के साथ बिताया समय या घरेलू श्रम को याददाश्त के सहारे गिनते हैं। व्यस्त और बाधित दिन अक्सर वास्तविक अवधि से अधिक लंबे महसूस होते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को लग सकता है कि उसने पूरे सप्ताह केवल काम किया, जबकि दर्ज आंकड़े बताते हैं कि समय कई छोटे हिस्सों में बंटा था और काम के बाहर भी पर्याप्त घंटे मौजूद थे। लेखिका के अध्ययन में शामिल कई महिलाओं ने डायरी भरने से पहले अपने काम के घंटे अधिक और नींद कम आंकी थी। यह निष्कर्ष काम के दबाव को नकारता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अनुभवजन्य थकान और घड़ी पर दर्ज समय एक ही बात नहीं है। समय का सटीक रिकॉर्ड व्यक्ति को यह देखने देता है कि कौन सी गतिविधियां आवश्यक हैं, कौन सी आदत बन चुकी हैं और किन खाली अंतरालों का उपयोग जानबूझकर किया जा सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत है कि सुधार किसी आदर्श दैनिक कार्यक्रम से शुरू नहीं होता, वह पहले सप्ताह भर के वास्तविक उपयोग को देखने से शुरू होता है। इस दृष्टि से समय डायरी आत्मदोष का उपकरण नहीं बल्कि निर्णय लेने का प्रमाण है। पाठक यह पहचान सकता है कि उसकी समस्या कुल घंटों की कमी है, अनिश्चितताओं का दबाव है या प्राथमिकताओं और कैलेंडर के बीच का असंतुलन। दूसरा, कुल कार्य घंटों से अधिक निर्णायक है काम की लचीलापन। वेंडरकम काम और परिवार के तनाव को केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं करती कि कोई महिला सप्ताह में कितने घंटे काम करती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि कार्य के समय में लचीलापन अक्सर कुल घंटों से अधिक उपयोगी होता है। कोई पेशेवर महिला अपेक्षाकृत लंबे घंटे काम कर सकती है, फिर भी यदि वह कुछ समय घर से काम कर सके, स्कूल या पारिवारिक जरूरत के अनुसार घंटे बदल सके या परिणामों के आधार पर आंकी जाए तो परिवार के साथ उसका तालमेल बेहतर हो सकता है। इसके विपरीत कम घंटे वाली नौकरी भी असुविधाजनक हो सकती है यदि उसका समय पूरी तरह कठोर हो और जिम्मेदारियां अनिश्चित बनी रहें। यह तर्क अंशकालिक काम को स्वचालित समाधान मानने पर भी प्रश्न उठाता है। कम वेतन, कम उन्नति की संभावना या कम नियंत्रण कई बार कम घंटों के लाभ को कमजोर कर सकते हैं। पुस्तक पेशेवर प्रगति के लिए दृश्यमान योगदान, महत्वपूर्ण काम पर ध्यान और विश्वसनीयता जैसे व्यवहारों की ओर संकेत करती है। इसका आशय हर कार्यस्थल को समान रूप से उदार मान लेना नहीं है, बल्कि पाठक को यह समझना चाहिए कि बेहतर भूमिका या व्यवस्था चुनते समय स्वायत्तता, यात्रा, बैठक संस्कृति और उपलब्धता की अपेक्षाएं वास्तविक मानदंड है। कार्यस्थल में लचीलेपन की बातचीत व्यक्तिगत सुविधा भर नहीं, दीर्घकालिक उत्पादकता और पारिवारिक स्थिरता का प्रश्न है। तीसरा, काम और घर के बीच उपस्थिति को घंटे गिनने से अलग समझना। पुस्तक यह मानती है कि परिवार के साथ अच्छा संबंध केवल अधिक घंटे घर में रहने से नहीं बनता। वेंडरकम के अनुसार घर पर मौजूद होने की गुणवत्ता भी मायने रखती है। पेशेवर दबाव के कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से घर पर होकर भी ईमेल, अधूरे काम या अगले दिन की चिंताओं में उलझा रह सकता है। दूसरी ओर, सीमित लेकिन ध्यानपूर्ण पारिवारिक समय अधिक संतोषजनक हो सकता है। यह विचार मातृत्व को मिनटों की प्रतिस्पर्धा बनाने से रोकता है। लेखिका ऐसे छोटे दोहराए जा सकने वाले पारिवारिक क्षणों के महत्व पर जोर देती हैं, जिनमें साथ भोजन करना, बातचीत करना, बच्चों की गतिविधियों में रुचि लेना या नियमित पारिवारिक परंपराएं शामिल हो सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को केवल नियोजित स्लॉट चाहिए या देखभाल का श्रम मामूली है। बल्कि यह दिखाता है कि अपराध बोध से संचालित निरंतर उपलब्धता और सार्थक जुड़ाव अलग बातें हैं। पुस्तक विशेष रूप से उस आदर्श छवि पर प्रश्न उठाती है जिसमें कामकाजी माँ से अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णकालिक देखभालकर्ता की तरह घर संभाले और साथ ही उच्च स्तर का पेशेवर प्रदर्शन भी करे। यह दोहरा मानदंड समय की कमी की अनुभूति बढ़ाता है। इसलिए घर में उपस्थिति का अर्थ स्पष्ट सीमाएं, साझा जिम्मेदारी और चुने हुए समय में पूरा ध्यान देना है, न कि हर घरेलू कार्य को स्वयं करने का दायित्व। चौथा, घरेलू श्रम, बाहरी सहायता और सब कुछ स्वयं करने की धारणा घर के काम के बारे में पुस्तक का तर्क समय प्रबंधन की नैतिक भाषा को चुनौती देता है। बहुत सी पेशेवर महिलाएं आय अर्जित करने और जिम्मेदार पदों पर होने के बावजूद घर की गुणवत्ता का मूल्यांकन एक आदर्शीकृत पूर्णकालिक गृहिणी के मानक से करती हैं। परिणाम स्वरूप वे सफाई, खाना, आयोजन और बच्चों से जुड़ी हर छोटी व्यवस्था को व्यक्तिगत जिम्मेदारी मान लेती हैं। वेंडरकम दिखाती हैं कि इस अपेक्षा का समय और मानसिक ऊर्जा पर बड़ा असर पड़ता है। पुस्तक का समाधान केवल अधिक कुशल बनने की सलाह नहीं है, वह कामों को बांटने, जीवन साथी की स्पष्ट भागीदारी, भुगतान वाली सहायता और कम आवश्यक मानकों को स्वीकार करने की वैधता पर जोर देती है। सहायता लेना विशेषाधिकार और आर्थिक क्षमता से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसे हर परिवार के लिए सरल विकल्प नहीं माना जा सकता। फिर भी मूल सिद्धांत व्यापक है। किसी कार्य का जरूरी होना यह सिद्ध नहीं करता कि उसे एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। परिवार को घरेलू श्रम की सूची, जिम्मेदारी और अपेक्षित गुणवत्ता पर खुली बातचीत करनी चाहिए। इससे अदृश्य प्रबंधन कार्य भी सामने आता है, जैसे नियुक्तियां तय करना, सामान की योजना बनाना और बच्चों की दिनचर्या याद रखना। पुस्तक का महत्व इस बात में है कि वह घरेलू व्यवस्था को निजी दक्षता की परीक्षा नहीं बल्कि संसाधनों और जिम्मेदारियों के वितरण का विषय मानती है। अंत में 168 घंटे का ढांचा, व्यक्तिगत समय और अध्ययन की सीमाएं, वेंडरकम का व्यापक ढांचा सप्ताह के 168 घंटों पर आधारित है। यह दृष्टि दिन को अलग अलग संकटों की तरह देखने के बजाय पूरे सप्ताह को योजना की इकाई बनाती है। नींद, काम, यात्रा, परिवार, घरेलू जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत रुचियों को साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत समय स्वतः नहीं निकलता, उसे प्राथमिकता देकर कैलेंडर में जगह देनी होती है। व्यायाम, मित्रता, पढ़ना या शौक विलासिता नहीं है, क्योंकि वे व्यक्ति की ऊर्जा और पहचान को केवल कर्मचारी या अभिभावक की भूमिका तक सीमित नहीं रहने देते। साथ ही पुस्तक का आशावादी निष्कर्ष सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए। इसका नमूना उच्च आय वाली पेशेवर माताओं तक सीमित है जिनके पास अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण, बेहतर सेवाओं तक पहुंच या कुछ हद तक सहायता खरीदने की क्षमता हो सकती है। अस्थिर नौकरी, लंबी यात्रा, एकल अभिभावकत्व, देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी या आर्थिक दबाव वाली परिस्थितियों में विकल्प बहुत अलग होंगे। इसलिए पुस्तक के आंकड़ों को सभी महिलाओं के अनुभव का सार्वभौमिक प्रमाण नहीं समझना चाहिए, फिर भी इसकी उपयोगिता बनी रहती है। यह पाठक को दोष या निराशा के बजाय अपने समय का ठोस मानचित्र बनाने, सप्ताह स्तर पर चुनाव देखने और उस संरचनात्मक सहायता की पहचान करने को कहती है जिसकी उसे आवश्यकता है। निष्कर्ष में, आई नो हाउ शी डज इट उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो काम, परिवार और निजी समय के बारे में प्रचलित निराशावादी धारणाओं को आंकड़ों के साथ जांचना चाहते हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष पाठक वर्ग महत्वाकांक्षी पेशेवर महिलाएं और कामकाजी माताएं हैं, लेकिन साथ ही प्रबंधक और समय प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य लोग भी इससे लाभ ले सकते हैं। विशेष रूप से यह पुस्तक उन लोगों को उपयोगी लगेगी जिन्हें लगातार व्यस्तता का अनुभव होता है पर जिन्होंने कभी पूरे सप्ताह के समय का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं देखा है। इसका व्यावहारिक लाभ समय डायरी, साप्ताहिक योजना, लचीलेपन की मांग, घरेलू कार्यों के पुनर्वितरण और व्यक्तिगत समय की रक्षा जैसे विचारों में है। बौद्धिक स्तर पर यह पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है कि संतुलन का अर्थ हर क्षेत्र में समान घंटे देना है। इसके बजाय यह प्राथमिकताओं, उपस्थिति और नियंत्रण की भूमिका पर ध्यान देती है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों से इसका अंतर इसका शोध आधारित तरीका है। वेंडरकम केवल अपनी दिनचर्या को आदर्श मॉडल की तरह प्रस्तुत नहीं करती बल्कि अनेक महिलाओं के दर्द समय से पैटर्न खोजती हैं। फिर भी पाठक को इसकी सीमा याद रखनी चाहिए। अध्ययन उच्च आय वाले एक विशेष समूह पर केंद्रित है और सामाजिक या आर्थिक बाधाओं का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए इसे हर जीवन परिस्थिति का नुस्खा नहीं बल्कि अपने समय और अपेक्षाओं की जाँच के लिए उपयोगी ढांचा मानना अधिक उचित है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लॉरा वेंडरकम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।